जाया ध्यान किये कम कलम कढ़े नीच निरंजन नान मऊ हे परमात्मन मे।
ये मूढ़ात्मा की चर्चा चल रही है जो कि मन वचन काय के व्यापार से परिणत होता है और इंद्रियों के विषयों की ओर उसका झुकाव होता हो तो क्या होता है ये बताते हैं।
दुख कारण ये विषय
दुख कारणानी जे विषय दुख के कारण क्या है। पांच इंद्री के विषय और मन का विषय। पांच इंद्री के विषय रूप रस गंध स्पर्श वर्णादिक शब्दादिक और मन का विषय तो आपको ज्ञात है। मन की बात नहीं हुई वह विषय कुछ भी हो सकता है। अनुकूल मन के लिए यदि होता है तो ठीक नहीं होता है तो वह कषाय के लिए कारण हो जाता है। इस प्रकार दुख के कारण विशेष होते हैं। विषयों के कारण ही तो कषायों का प्रादुर्भाव होता है। कषाय क्यों उत्पन्न होते हैं आत्मसत्व के चिंतन करने से नहीं फिर भगवान को देखने से नहीं किसके चिंतन करने से कषाय उत्पन्न होते हैं तो पांच इंद्र के विषय और मन का विषय इसी के कारण अनुकूलता यदि नहीं होती तो कषाय होता। अनुकूलता हो भी जाती है तो कषाय हो जाती है किंतु विषय ही बेस बनता है दोनों में कषायों का प्रादुर्भाव। इसलिए कषाय किया जाता है पांच इंद्रिय और मन के विषय को लेकर के यदि हो जाते हैं तो आचार्य कहते हैं वह कर्म का दोष है आत्मा का दोष नहीं। कषाय होने में और कषाय करने में बहुत अंतर है। कषाय यदि किया जाता है तो विषय को लेकर के किया जाता तो कभी वह नेत्र इंद्र का विषय बन सकता कभी वह स्पर्श इंद्र का विषय बन सकता कभी ग्राण इंद्र का विषय बन सकता कभी चतुर इंद्र का विषय बन सकता और कभी वह मन का विषय भी बन सकता लेकिन विषय को लेकर के ही कषाय उत्पन्न ये अभिशाप दुख कारण हे विषय शेषो हे उदी और सुख के हेतु में तो रमन करता है और दुख के हेतु हो जाते हैं तो उनसे वह बचना चाहता है। हो मिच्छा इच्छु जीवड़ो अब देखो पंचेंद्र के विषयों के साथ जो संबंध जुड़ गया मिथ्या दृष्टि का तो पंचम अनुसार में तो कम से कम पंचेंद्र के विषय तो रहते ही हैं वो हो ही गया। अब छठम अनुसार में पंचेंद्र के विषय नहीं भी रहे फिर भी शरीर इत्यादि को लेकर के वह काम कर जाता अथवा मान लीजिए मानसिक धरातल पर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वह उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वह बहिर्भूमिका में आ जाता है और अपने विषय और कषाय के कारण दुख पाता चला जाता है। कोई भी समय हो तो भीतर भीतर उसका घुमावदार चलता रहता है शांति उसको खेल उसको मन को तो ज्ञात होता ही है। कर्म के उदय एक तो सहज रूप से होता है और एक चेष्टा करने रूप होता है। जैसे मान लो क्रोध का उदय है क्रोध करे ये नियम नहीं क्रोध करता है उस समय वो उससे प्रभावित होकर के विषयों की ओर। अब मान लो क्रोध कर रहा तो उसके साथ साथ ये सोचना चाहिए था कि निमित्त के ऊपर क्यों क्रोध कर रहा ये तो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। निमित्त के ऊपर क्रोध क्यों कर रहा है क्रोध तो क्रोध के ऊपर करना चाहिए था, और कोई घटना को लेकर ही करना चाहिए था। यदि करता है तो जड़ के ऊपर करना चाहिए था, पर के ऊपर यदि करता है तो जड़ के ऊपर क्यों नहीं करता? निश्चित है उसकी क्रोध करने की, मान करने की, माया करने की एक भूमिकाएं भिन्न भिन्न रूप से होती हैं। उसमें वह कहे कारण विषय दुख से कारण ये विषया तान विषयान सुख हेतु मत्वारम्भते। हाँ, जो दुख के कारण विषय हैं उनको वह सुख का कारण मान करके रमण करता है। एक लखपति है, करोड़पति बनना चाहता है। क्यों, क्या तकलीफ है? पेट के लिए तकलीफ है क्या? पैर के लिए तकलीफ है क्या? तकलीफ है, तकलीफ यह है कि मन की तकलीफ है। मन का तकलीफ क्यों है पूछा गया? इसलिए कि पड़ोस में हमेशा करोड़पति रहता है और हम उनके सामने लखपति रहे। अब देख लीजिए, अब करोड़पति बनना है, पंच इंद्रिय विषयों को भी गौण कर जाता है, बचाता है, प्रॉफिट बनाना प्रारंभ कर देता है, दुकानदारी ओवर ड्यूटी चालू हो जाती है, तान से स्थानांतर जानना प्रारंभ हो जाता है। अब लखपति करना है, लखपति बनना, यूं ही बन जाता है, क्यों ही सामने वाला करोड़पति से अरबपति बन जाता है। अब देखो, अब अरबपति अपने जीवन में तो है ही नहीं। अब ये करोड़पति बनने के पीछे जो कुछ खाना पीना था वो भी नींद हराम वाली बात हो गई, बन जाता। हे भगवान, अब आप ही चरण है कि हम तो प्रयास करके आर्य चक्र तो बन गए, लेकिन अब हम क्या करें? मान लीजिए चक्रवर्ती बन भी गया तो पड़ोस वाला तीर्थंकर हो जाता, अब क्या करोगे? निदान करके तीर्थंकर बन सकोगे क्या? नहीं। विकास होता है लेकिन विनाश के लिए होता है। विकास जो है वह विनाश के हेतु को लेकर के हो रहा है, क्योंकि वह विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी विपरीत बुद्धि के साथ उससे मैं ये कह रहा, अरे इसमें तो कभी सुख है नहीं, पंचित के विषय कथनचित सुख हो सकते हैं, मन में तो कभी सुख होता ही नहीं, मन का कोई विषय थोड़ी है। मन को विषय तो माना जाता है लेकिन इंद्रिय का विषय विषय रहता है, है? ये सब भाव यदि नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो फिर परमात्मा प्रकाश की भावना नहीं कर सकेगा, क्या बात होगी? तो इसीलिए तो जब गृहस्थ आश्रम में यदि प्रमाद प्रकाश की भूमिका कर रहा है तो निश्चित रूप से यह नहीं कर सकेगा। फिर जिसकी दृष्टि विषयों से ऊपर उठ जाती है, मन की ख्याति पूजा लाभ से ऊपर उठ जाती है, वह क्या कहे कुछ भी नहीं आता है, तो अरंग सिद्ध करता है और एक एक क्षण वह अपना पावन बनाता चला जाता। कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, खराबी नहीं है, खराबी अन्यत्र नहीं है, खराबी केवल विषयों को लेकर के है, और विषयों में भी तीव्र विषय जो है पंचित के नहीं है, मन के, मनुष्य के मन के। पद्म पुराण में पढ़ रहा था तो एक प्रसंग याद आ गया, रावण को केवल ज्ञान होने में देर नहीं लग सकता, रावण को केवल ज्ञान होने में देर नहीं लग सकता, इतनी जल्दी उसके मन की एकाग्रता हो जाती क्या पता। रावण का जो छोटा भैया विभीषण भी है, दो तीन साथी और भी है, ये सब मिलकर के एक भयानक जंगल में गए हैं, और भयानक जंगल में जाकर के ऐसे बैठ जाते हैं जहां पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े सर्प जो उनके पास से रुल रहे जा रहे हैं आ रहे हैं उनके बीच में बैठे हैं, और इसके बाद भी किसी कोई भी तस्मस नहीं। एक जो है गंधर्व या कोई देव जो है आकर के परीक्षा के लिए सबके ऊपर उपसर करना प्रारंभ कर देता है तो सब उठ कर भग गए, वो विचलित हो गए, मंत्र सिद्ध नहीं कर पाए। 10,000 मंत्र मानो करना है तो कोई 9000 तक गया, कोई 10000 तक गया, लेकिन शुद्ध नहीं हो पाया मंत्र। सोचा रहे क्यों नहीं शुद्ध हुआ, क्योंकि वो उपसर्ग के कारण मन डावाडोल इत्यादि चंचलता आ गई, शुद्ध नहीं हो पाया। और रावण बैठा नहीं और 10000 की जगह 5000 मंत्र जाप हुए नहीं और उसको शुद्ध हो गया मंत्र। तो वहां पर पद्म पुराणकार कह रहे हैं पुराणकार कि यदि रावण मोक्ष मार्ग में प्रयास करता तो केवल क्या खटक्षत्रिय आ जाता। क्यों? पूरे की पूरे जो है उपसर्ग होने के उपरांत भी विचलित नहीं हो सका। देखो मन का विषय कितना है, वह तीर्थंकर बाद में बनेगा, लेकिन उस भाव से तो उसे नरक जाने का नौबत आ गई। इतनी मन की एकाग्रता होती है विषयों में भी, मन के विषयों में भी, इसका नाम एकाग्रता नहीं, विकास तो होता है। नहीं समझे? नहीं देखो स्पर्धा, स्पर्धा सुनो, स्पर्धा फिर भी ठीक है, स्पर्धा जो है वह इनडायरेक्ट जाकर के ईर्ष्या का रूप धारण करती है। कषाय कषाय पास हो जाते हैं वो तो धर्म ज्ञान के साथ पास हो जाते हैं, किंतु डिवीजन लगते समय फिर आप डिवीजन का अर्थ ये है कौन सा डिवीजन, वो भी फर्स्ट में आ जाएगा, ये भी फर्स्ट हो जाए, डिवीजन में भी अब वो तुलना होनी, कंपेरेटिवली जहां पर आ जाता है वहां पर वह कंपेरेटिवली न कर करके ईर्ष्या करो। देखो स्पर्धा के लिए सुनो, स्पर्धा के लिए द्वैत आवश्यक है, धर्म ध्यान के लिए द्वैत का अभाव आवश्यक है। भगवान से स्पर्धा कर रहे हो क्या? भगवान से स्पर्धा कर रहे गलत है, भगवान से तो भक्ति करते हैं, भगवान से स्पर्धा नहीं। तो कहे हमें अभी स्पर्धा की बात कह रहा हूं, स्पर्धा स्पर्धा समकक्ष के साथ हुआ करती है। हाँ स्पर्धा समकक्ष के साथ हुआ करती है, और ईर्ष्या जो होने लग जाती है तो बड़ों को लेकर के छोटा यदि उनसे भी करा जाए तो वह ईर्ष्या होने लग जाती है, और ईर्ष्या भी जो स्पर्धा बड़े के साथ नहीं होना चाहिए। मैं करना ठीक है ये इसका विधान नहीं बना रहा हूं, होती है तो ठीक हो रही है, लेकिन वह ईर्ष्या का रूप धारण नहीं करना चाहिए, और आगे जाकर के भगवान से आप स्पर्धा करने लग जाओ तो ये बिल्कुल गलत हो जाए। ऊपर उठने के लिए ये भेद नहीं होता, धर्म ध्यान में आचार्यों ने यह कहा कि ऊपर उठता वह कषाय से ऊपर उठे, बल्कि ये कहना चाहिए कि इसका भी कार्य जो हो रहा भगवान ये भी अपाय से बचे। लेकिन कहने से होता है क्या? भावना तो उसको भावो, भावना उसको हम कब कैसे कषायों को काटे ये बन जाए, ये इनका जब ये मान लो आगे जाता तो क्या बात हो गई। महिमय तू तू मोक्ष मार्ग में ये मान अज्ञान माना जाता है, मोक्ष मार्ग में तो अकेला होता है, दूसरा नहीं होता मोक्ष मार्ग, आप अकेलो अवतरे। नहीं समझ में आ तो रहा है? अच्छा पूरा नहीं आ रहा वाह, ये तो यही तो बात है, हमेशा हमेशा स्कूलों में यही देखा गया है कि वो स्पर्धा चलता है, लेकिन स्पर्धा का रूप कषाय के रूप में परिवर्तित होता है क्या नहीं आप देख लेना, होता है क्या नहीं देख लो पहले। जैसे मान लो सुन लो कोई बात नहीं, स्पर्धा कर रहे थे आप फर्स्ट डिवीजन में आ गए, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए, जिसके साथ तुम स्पर्धा कर रहे थे क्या होगा? इतना है तो फिर ठीक है, फिर उसकी क्या आवश्यकता है मैं भी उसके समान मेहनत करूं। सुनो वो ये ठीक है, देखो ये तो हम मान रहे हैं उन्नति के लिए हम भी अच्छे परिश्रम कर ले जैसे वो परिश्रम कर रहे हैं उस कर्ता का। ये तो उससे आगे जल्दी निकल जाए तो ये भाव क्यों ऐसे करने से होता है क्या? सुनो, हमें उनके समान मेहनत करना है, वो जैसे कठिन परिश्रम करता है उसके अनुसार मुझे भी करना है, ये स्पर्धा भी नहीं मानी जाती। हमें उनसे आगे जाना है, एक आशा आ गई। मतलब ये कि आपकी दृष्टि में मैं ऊंच बनूं और वह ऊंच न बने ये तो तभी तो शुद्ध होगा। हम उनसे भी आगे बढ़े इसका अर्थ यह है कि मेरे से पीछे वह रह जा। गिरा तो मन से, एक व्यक्ति मन से गिराता है, एक व्यक्ति वचन से गिराता है, एक व्यक्ति काय से गिरा, तो मन से तो गिरा रहा है वह पीछे रह जाए मैं आगे बढ़ूं। भगवान हम ये कहते हैं कि दुनिया पहले मुक्ति चले जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हम पीछे कैसे जा जाए, लेकिन हमारे भी नंबर आ जाए भगवान। हमें मत भूलियो, उनको पहले चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, यदि देने का भी मार्ग है, भगवान यदि देते भी हैं तो हम तो ये कहेंगे हमें भी मिलना चाहिए उनको पहले में जा, बहुत अच्छी बात है पहले उठा। लेकिन उनसे मैं पहले जाऊं ये भाव कचाय का हो रहा है हमारी दृष्टि में। तो इसलिए वह पीछे रह जा मैं उससे आगे बढ़ू, इसका अर्थ वो पीछे रह जाए। इस भाव के द्वारा यदि होता है न भूदू न भविष्य मोक्ष मार्ग में। दूसरे को मारने के लिए वह यदि कोशिश करता मंत्र सिद्ध करता तो मंत्र सिद्ध तो हो सकता, लेकिन ये ध्यान रखना मन सिद्ध नहीं होगा। मन सिद्ध का मतलब अच्छाई उसके मन में नहीं आ सकते। रावण के मन में तो एकाग्रता तो आ गई, लेकिन एकत विभक्त नहीं आया। एकाग्रता अलग वस्तु और एकत विभक्त अलग वस्तु। राम के मन में एकाग्रता तो नहीं आ रही है, लेकिन एकत विभक्त की भावना नहीं छूट रही। एकाग्रता नहीं, राम के जीवन में तो मंत्र सिद्ध होना ही मुश्किल हो। तो सीता के पीछे पड़ गए, अब सीता का कैसा होगा कैसा होगा, और रावण जो है सीता को लेकर बैठा और क्या होगा उसके बारे में चिंता नहीं करता। राम से हारना नहीं, राम को लक्ष्मण को मार करके रहना, तब कहीं जाकर के हमारा मन ठीक हो सकता। कितना हार क्या क्रोध ये जब है स्पर्धा नहीं, ये जड़ के साथ स्पर्धा नहीं होती। सुन लो, अभी पहले हमने कह दिया था उत्तर मिल गया। जड़ के सुनो ये जड़ के साथ स्पर्धा होती नहीं, जड़ के साथ ईर्ष्या होती नहीं, जड़ को कभी गाली आप देते नहीं, पागल हैं तो क्या। सुनो वो वह बदला, वहां का बदला यहाँ लिया जाता है, वह तो पागलपन है एक प्रकार से। हुआ नहीं तो दूसरी को पर ले लिया, ये है ये बात है। जड़ आ जाता तो जब मर जाता उसके साथ स्पर्धा करते क्यों नहीं। हाँ ये तो बात है महाराज, कि भीतर का अनुसंधान के द्वारा अपने आप ज्ञात हो रहा है कि भीतर क्या क्या चलता रहता है। कहो नहीं, ये एक घुटन, ये एक पीड़ा है, ये एक आत्म धोखा है, ये एक आत्मवंचना है, निश्चित बात है। तो उन्नति के मार्ग रोक रहे स्वयं, दूसरे के माध्यम से तो तुम्हारा ना हित होने वाला ना अहित होने वाला। समय साहब तो ये कहता कायेन दुख वे भिया सत्यवम तुम से जद ही सौवावेश मिच्छा दुरा कमेन जदि सत्ता वाचाए दुख वे भिया सत्यवम तुम से जद ही सौवावेश मिच्छा दुरा कमेन जदि सत्ता मनसाय दुख वे भिया सत्यवम तुम से जद ही सौवावेश मिच्छा दुरा कमेन। न मन के द्वारा न वचन के द्वारा न काय के द्वारा तुम्हारी विपरीत कहने से दूसरे कभी कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके जीवन में यदि कर्म का उदय हो असाता का तो वह दुखी बन सकता, उसके असाता में भी वह दुखी बने ये भी कोई नियम नहीं। पुरुषार्थ करेगा असाता के उदय हो तो और श्रेणी बन जाएगी उसकी। असाता के उदय में वह दुख हो ये कोई नियम नहीं, लेकिन दुख यदि होगा तो असाता के उदय में हो सकता है। लेकिन हमारे मन में काय की चेष्टा के द्वारा उसे दुख हो चिन्ह कर सकता। यह गहरा अध्यात्म भगवान सबके गले उतर जाए, बीमारी निकल जाए सारी सारी। ये बीमारी दूर करने का एक ही मात्र उपाय है, दूसरा नहीं करता कर नहीं करने दीजिए, लेकिन इन क्षणों को अध्यात्म क्षणों को तुम तो मत खो। संभव है कि तुम्हारे अनुकरण का वह उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इट मे बी पॉसिबल। यदि आप भी उसी के पीछे पड़ जाएंगे तो इम्पॉसिबल दोनों के लिए, फॉर बोथ, दोनों के लिए वो इम्पॉसिबल, इसलिए कि दोनों की जो है वृत्ति बाहर आ। नहीं बिल्कुल ठीक है, आगे तीन गाथा और ले। कायेन सौखमेय सव्येवं तु मन्नसे जदिहि सव्वावेत मिच्छा सुविधा कमेन जजिसा। तमाम सुविधा था, अब यहाँ सुविधा है, दोनों बात, वो दुख था यहाँ पर सुख है। वहां पर हम सुख पैदा करेंगे दूसरे में, यह करने का विकल्प है, यहाँ दुख पैदा कर। सम्यक दर्शन की भूमिका में सुख पैदा करने के, या मोक्ष मार्ग के भूमिका में सुख पैदा करने के भाव कथनचित कथनचित है, लेकिन मोक्ष मार्ग में दूसरे को दुख देने के भाव तो नियम रूप से है। कषाय करना गलत है, ये कषाय है, वो तो स्पर्धा जो है, स्पर्धा जो है वह न दे दान और हम दान दे, ये गलत है। देना चाहिए, नहीं तो मात्र रखा। सात गुण होते हैं दाता के, दाता देना चाहता है और सब दाता देना चाहते हैं, तो मही देऊं वो न दे या उनसे पहले मैं देऊं, इसका मतलब क्या? वो भी तो सोचता होगा उनसे पहले देऊं तो भगवान आप किसको दे हैं? जिसका पुण्य जैसा होगा। दान के माध्यम से दान का महत्व बढ़ जाए, इस प्रकार की आप स्पर्धा कर दीजिए, यूं कहो दान के माध्यम से दान का महत्व और बढ़ जाए। क्या दान करना तो कर्तव्य है अपने को, मैं करोड़ रुपए दान कर रहा हूं इसमें अभिमान की क्या बात है, मैं पहले कर लू इसमें अभिमान की क्या बात है, वो भी करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। मोक्ष मार्ग में ऐसे भाव कहां होते हैं सब लोगों के, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये कहना चाहिए, क्योंकि हम तो कर रहे हैं, हम तो बहुत दृढ़ है करने हैं, इसलिए वो भी करने लग जाए, छूट ना जाए उनका, छूट ना नहीं दे, प्रोत्साहन बहुत अच्छा किया। ये ठीक है, ये भी ठीक है, स्पर्धा नहीं, उन्होंने शक्ति नहीं छुपाते हुए उन्होंने दे दिया, और हम शक्ति को छुपा रहे थे, हमें भी शक्ति छुपाए बिना दे देना चाहिए, ये भाव तो ठीक है। मैं उनसे ज्यादा दूं, ये बहुत कठिन होते हैं, इन भावों को पकड़ो, बाकी सारे सारे छोड़ दो, कोई बाधा नहीं। ये कला जिसको आ गई, हमें उनके बारे में कोई चिंता नहीं आती, क्योंकि वह कहीं भी रहे मोक्ष मार्ग में काम करता रहेगा, उसके बारे में कोई चिंता नहीं। किंतु जो इस कला में निष्णात नहीं है उसके बारे में विचार करना पड़ता है, ये धारणा उसकी भी बन जाए तो फिर कहना क्या होगा, वह रात दिन असंख्यात गुणी निर्जरा करने लग जाएगा, और निर्जरा करने लग जाए तो फिर और क्या चाहते हैं। निर्जरा का स्रोत रुके नहीं, इस प्रकार चिंता स्वयं के बारे में भी करो और अपने सहधर्मी है उनके बारे में भी करो। वो लौकिक हो गए ना, अर्थ करी विद्या हो गई, अर्थ मैंने प्रयोजन क्या होता, ये है कि अज्ञान का परिणाम है। किसी भी प्रकार से निर्जरा बढ़े, मोक्ष मार्ग में गुणों के विकास हो, मूल गुण है तो उत्तर गुण की ओर चले जाए, उत्तर गुण है तो निर्दोषता की ओर चले जाए, और वो भी है तो ध्यान की ओर चले जाए, कषाय के थोड़े थोड़े विकार है वो भी समाप्त हो जाए, और जो जिनके नहीं हो पा रहे उनके लिए सहयोग दे, ये जितने भी भाव हैं ये अंतर्मुखी दृष्टि के परिणाम हैं। यदि चैनीत इस बात को देख लेते हैं तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? हाँ, जैन धर्म बढ़ते चलो ये कहें तो कैसे बढ़ते चलो, उसमें कुछ अंतर तो देखना चाहिए अन्य की अपेक्षा से। उससे भी ज्यादा अपने यहां हंगामा होने लग जाए तो कहते तो हम ही तो ठीक है, हम और तुम ये कहिए, अंतर कहां है? ये देख लेना चाहिए।
सुमिथ्या दृष्टि विषयान सुख हेतु मत्वा रमते स कह मिथ्या दृष्टि जीव यो असो दुख रूप विषयान से नहीं न सुख रूपान मन्यती मिथ्या दृष्टि किम अकृत्यम पापम न करोती। वह इस प्रकार दुख के हेतुभूत विषयों को सुख रूप मान लेता है तो क्या वह मिथ्या दृष्टि नहीं है? किम
चौर्यानंद आया, परिग्रहानंद आया, यानी विषय संरक्षणानंद आया, इसमें जो विषयों में आनंद आया इसका अर्थ है विषय दुख के लिए कारण है। यदि आनंद आ गया तो वह रौद्र ज्ञान हो गया, धर्म ज्ञान कहां हुआ? धर्म ज्ञान नहीं हुआ तो धर्म ज्ञान हो रहा इस प्रकार मानना गलत धारणा हो गई, इस धारणा को तो पलटाना होगा।
अभी तो सर्वम करोती एव अकृत्य पाप जो है वह करता ही रहता है और इसकी कोई सीमा नहीं। अत्र तात्पर्य मिथ्या दृष्टि जीवो वीतराग निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न परमानंद परम समृद्धि भाव रूप सुख रसापेक्षा निश्चय दुख रूपान अपि विषयान सुख हेतु मत्वा अनुभवति इत्यर्थः। मिथ्या दृष्टि जीव वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ परमानंद परम समृद्धि भाव रूप जो सुख है रस है उसकी अपेक्षा से निश्चय नहीं है दुख रूपान विषयान एव सुख हेतु मत्वा दुख रूप विषयों को सुख रूप हुआ मान करके अनुभव करता रहता है। एवं त्रिविध आत्म प्रतिपादक प्रथम महाधिकार मध्य इस प्रकार तीन प्रकार के आत्माओं के प्रतिपादन करने वाले प्रथम अधिकार में पज्जे रतो जीवड़ो इत्यादि सूत्राष्ट के न मिथ्या दृष्टि परिणति व्याख्यान सरम समाप्त। इस प्रकार ये सूत्राष्ट के द्वारा मिथ्या दृष्टि के परिणति को बताने वाले ये व्याख्यान स्थल समाप्त हुआ। तदनंतरम सम्यक दृष्टि भावना व्याख्यान मुख्यत्वेन कालु लहे विनु इत्यादि सूत्र कालु लहे विनु जोइया जिम जिम मोह गले तिमु तिमु वा दंसन लय जेउ नियमे अपमुणे समय पाते पाते ये योगिन जैसे जैसे मुंह को गलाता चला जाता या मुंह गलता जाता है वैसे 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 यह दर्शन को प्राप्त होता चला जाता है। नियम से आत्मा को वह जानता है देखता है। यथा यथा मतलब ये कार्य को पुरुषार्थ करने का ऐसा है कि जैसे मोह को दबाने का प्रारंभ करते हैं तो धीरे 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 वह दबता चला जाता है, एक साथ नहीं जगता। हाँ बिल्कुल, वीतराग सम्यक दर्शन की भूमिका भी जो है ना धीरे धीरे जैसे जैसे प्रयास अंतर्मुहूर्त तो कम से कम लगता है सम्यक दर्शन की भूमिका, शायद सम्यक दर्शन की भूमिका बनने के लिए अंतर्मुहूर्त लगता है, उपशम सम्यक दर्शन के लिए भी धीरे धीरे ऐसे कटाक्षर हो जाता है, उसके परिणाम धीरे 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 उसमें एक साथ
अंतकूढ़ा उकड़े होने की उपरांत की बात है, ये क्या समदर्शन होता है। भगवत भावना इसलिए कहे सम्यक दृष्टि जो भावना करता है वो तो भावना तो मुख्यता को लेकर यहाँ पर कथन किया जा रहा, भावना नहीं। यहाँ पर कोई नहीं, जैसे जैसे अब इनको रुचि मिली उसी प्रकार ये करते चले। अध्यात्म में कोई नियम नहीं लागू होते, क्रमबद्ध नहीं, पुनरावृत्ति भी हो जाए ऐसा काल वे। हे योगिन कालम लत्वा यथा यथा मोह गलयते, जैसे जैसे मोह गलित होता है वैसे वैसे दर्शनम सम्यक्तम लभते, सम्यक् प्राप्त। काल को पा करके समय समय पर जितने पुरुषार्थ उतने पुरुषार्थ करो, करके रहेंगे ऐसे कषाय मत करो। अत काल आएगा, मतलब ये है कि काल का अर्थ क्या है, काल का अर्थ जो हमारे दृष्टि में पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता उसी का नाम काल। हाँ, योग्यता किसमें होगी, कर्म को कटने में होगी ना, तो अपने भाव भांति चले जाओ। पहले खिचड़ी का उदाहरण दिया था, खिचड़ी बना रहे हैं कि खिचड़ी बन रही है, तो इतना ही है बना रहा हूं, ये कहता है कि पूर्व की अपेक्षा से कह रहा, व्यवहार की अपेक्षा से बन रही है, निश्चय की अपेक्षा। उसी प्रकार आप भाव करते चले जाइए, जैसे जैसे भावों का उद्रेक विकास होगा वैसे वैसे वह होगा काल। अपने आप काम हो रहा है ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन काम होगा तो इसी ढंग से होगा। हाथ जोड़ करके बैठ जाओ काल आ जाएगा और मुंह गल जाए, ऐसा नहीं। मुंह को गलाने का तरीका यही है कि आप चुप बैठ जाइए, पंचिंद के विषयों से हट करके बैठ जाइए, पुरुषार्थ पूर्वक कषाय न करिए, किसी से बोलिए नहीं, फिर इसके उपरांत कषाय हटता हुआ गलता हुआ आपको नजर आएगा। ये भूमिका है, यथा मोह विगलत तिम तुम तथा तथा दर्शनम सम्यक्तम लभते, उसी प्रकार वह सम्यक दर्शन प्राप्त। तदनंतरम क्यों करोते, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत क्या करता, नियमीन आत्मानम मनुते, नियम से आत्मा को प्राप्त करता है, जानाति करता है। एक इंद्रिय विकल इंद्रिय पंचेन्द्रिय संगी पर्याप्त मनुष्य देश कुल शुद्धात्मोपदेश आदि नाम उत्तरोत्तर दुर्लभ क्रमीण सुख प्राप्त तू या काल लब्धि ही। देखो एक इंद्रिय से विकल इंद्रिय, विकल इंद्रिय से पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय से संगी, संगी से पर्याप्त से मनुष्य, मनुष्य अच्छा देश अच्छा कुल अच्छा शुद्धात्मा का उपदेश सुननी होगी, सत्संगति आदि ये उत्तरोत्तर दुर्लभ दुर्लभ होते चले जाते हैं, सुख प्राप्त होते हैं, यही काल लगते। हाँ, इन्हीं के माध्यम से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, दुर्लभता ही बताए, तीन प्रकार की काल लगते बताए सर्वाचित देव, वो इसी में एक है। ये भवरूप काल लगती है, ये भवरूप काल लगती है विकास है, एक काल लगती कर्मकृत है, एक काल लब्धि भवकृत है, और एक लब्धि कालकृत काल की विवक्षा में कही जाती है। यहां पर आखिरी चुको है देव प्रसन्न के अनुसार का कहे तो हो गया, चुप बैठ जाओ और कोने में बैठ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। कालब्धि आई इसलिए तो हम ये पढ़ रहे हैं, क्या बात हो गई, कालब्धि आई इसलिए तो हम कषाय कम कर रहे हैं, आपकी कालब्धि इसलिए नहीं आए, ये कालब्धि नहीं है इसलिए कषाय कर रहे हैं, ऐसे कर रहे तो क्या करोगे आप। तो वो कह रहा ना, तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता, सम्यक दर्शन ठीक है, ऐसे भी इसलिए तो कह रहा हूं कि इस प्रकार कह भी क्यों रहे हैं, हमारे ये कहना है उनसे। होना था ऐसा नहीं कहा, होना था ऐसा नहीं, जिस ओर वह इतना प्रयास कर रहा था एकाग्रता के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, इससे भी आप ठीक है, उसके लिए आपके भी ऐसा ही होना था इसलिए प्रश्न कर रहे हैं, और हमारे लिए जो है ना पुरुषार्थ के मूलक ही होगा इस ढंग से, हमारे लब्धि समझ लो, इसलिए हम कर रहे हैं। लब्ध काल को कोई नहीं मानता उसके लिए ये कहा जा रहा है, ये काल भी कोई वस्तु है जो सामान्य परिणाम में कारण है। ये तो 50 बार उदाहरण दे चुके हैं। तो हमें कह रहे ना उपदेश मत दो, मैं ये कह रहा हूं उपदेश क्यों दे रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, देखो उस कालब्ध को नहीं मान रहे आप। तो वो इसी कालब्धि के अपने विरोध करने रूप में किसी की कालब्धि आ गई तो वो क्या कहेगा आपको? वही तो कह रहा है ना, सामने वाले कहता है कि जिस प्रकार आपके कालब्धि के द्वारा काम हो रहा है उसी प्रकार कालब्धि के विरोध करने रूप कालब्धि आई है, इसलिए डट करके हम विरोध कर रहे हैं। क्या बात अच्छा होता है मानिए, ये तो स्पष्ट है, ये हम उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कहिए देखो, तो ऐसा नहीं, हम उसके लिए ये उत्तर दिया जा रहा है कि जब फिर प्रश्न अपने नैसर्गिक सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन के भेद नहीं होते, पहले पढ़ करके आए हम अधिगम सम्यक दर्शनाभावात क्योंकि कालेन भव्यानाम निश्रेतोपलब्धि है, पहले आया वार्त नहीं। हाँ केवल स्वभाव से ही होता है, अधिगम सम्मेलन तो होता ही नहीं, क्यों समय पर मुक्ति होती है, तो पहले आया वार्त नहीं। हाँ केवल स्वभाव से ही होता है, अधिगम सम्मेलन तो होता ही नहीं, क्यों समय पर मुक्ति होती है, तो अधिगम की अभाव हो जाए निसर्ग सम्मेलन भी आओ कुछ मतलब नहीं, अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं, अधिगम का अर्थ उपदेश पूर्वक उपदेश ग्रहण करने रूप पुरुषार्थ इत्यादि ये लिया उन्होंने प्रश्न में, उन्होंने ऐसा नहीं लिया जैसे तुम घुमा रहे हो, ऐसा नहीं लिया उन्होंने, ये कहा कि यदि इस प्रकार है तुमने हमारे प्रसंग को नहीं समझा। तो वो ऐसा है कि वो अपने के दिमाग में नहीं आता इसलिए उसको काकताली न्याय बोलते हैं, काकताली न्याय का अर्थ इतना ही, जब ताली बजाता है उसी समय कौवा उड़ता आ रहा था और बीच में फंस गया, ये काकताली न्याय। ये ऐसे हाँ कुछ काम काली न्याय का ऐसा ले लेते हैं जो है डंडल के ऊपर बैठा नहीं और पेड़ ही गिर गया, अथवा काम काली न्याय ये है कि एक जो है पेड़ के नीचे से कौवा जा रहा था और ऊपर का फल उसके गिर गया और उसके मुंह में आ गया, ये काम काली न्याय। तो मतलब अनहोनी जो क्या वो होने है, वो कहते हैं हो गए ना, बहुत दुर्लभ है समय में होता है ना, समय में बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बांध बूंद करके वहां पर बैठ जाओ, किताब नीली पेन क्यों चाहिए, दो दो पेन क्यों चाहिए, वो सारे सारे बांध बूंद करके रख लो, क्या आवश्यकता, समय पर सब हो जाएगा। एवं प्रवृत्ति हो गया एक देख कथंचित काकताली, देखो काकताली न्याय ने ताम लब्धवा परमागम कथित मार्गेण मिथ्यात्वादी भेद भिन्न परमात्मोपलम्भ प्रतिपत्तिर यथा यथा मोह विगलति तथा तथा शुद्धात्व एव उपादे इति रुचि रूपम सम्यक्तम लभते। उस काललब्धि काकताली न्याय के माध्यम से काकलब्धि को प्राप्त होकर के परमागम के कथित मार्ग से मिथ्यात्वादी भेद भिन्न जो परमात्मा का उपलम्ब की प्रतिपत्ति है उसको वह धीरे धीरे प्राप्त करता, जैसे जैसे मोह गलित होता चला जाता है तैसे वैसे शुद्धात्मा ही उपाधे इस प्रकार रुचि रूप सम्यक को प्राप्त होता। शुद्धात्म कर्मणोर भेद ज्ञानी ने शुद्धात्म तत्व मुनुति जाना देती, शुद्धात्मा और कर्म इन दोनों के बीच में जो भेद है उसका ज्ञान हो जाता है तो शुद्धात्म तत्व को वह जानता है मानता है। अत्र यत्ते उपाधे भूत से शुद्धात्मन रुचि रूप परिणामेन निश्चय सम्यक दृष्टि जातो जीव तयेव उपाधे इति भावार्थः। अब देखो यहां पर निश्चय सम्यक दर्शन की बात कही जा रही है, जो जो कि निश्चय सम्यक दर्शन की बात पहले कह करके आए हैं, निर्विकल्प समाधि राग द्वेष इत्यादि नहीं करने रूप अवस्था में होती है, वह धीरे 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 होती है, एक साथ नहीं होती है, उसका यहाँ पर उपक्रम कहा क्या है। रुचि रूप का मतलब पहले बताए ना, राग द्वेष इत्यादि से रहित जो शुद्धात्मा ही उपाधि है, इस प्रकार का जो भाव है उसको उठने रुचि रूप और कोई नहीं। ऊर्ध्वं पूर्वोक्त न्याय ने सम्यक दर्शन भूतवा, पहले जो कहा गया सम्यक दर्शन के न्याय के अनुसार होता हुआ मिथ्या दृष्टि भावनाया प्रतिपक्ष भूतान यादृशी भेद भावना करोती सादृश्य क्रमेण सूत्र सत्य विवृति। हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि के विपरीत रूप से भावना ये करता है, कैसे करता है इस क्रम बता रहे। अपगौरव किन्नु नवी अपर तुन हो अप तुम विफूल नवी जो आत्मा गौर नहीं है, आत्मा कृष्ण नहीं है, आत्मा लाल नहीं है, आत्मा स्थूल और सूक्ष्म नहीं है, और ज्ञानी न ज्ञानी पश्यति, इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से देखता और जानता है। आत्मा गौरव न भवती, रक्तो न भवती, आत्मा सूक्ष्म भी न भवती, स्थूल भी नहीं होती, फिर कैसा रहता है। ज्ञानी ज्ञान स्वरूप ज्ञानी न करण भूति न पश्यति, ज्ञान स्वरूप वाला ज्ञानी ज्ञान के द्वारा ही जो के साधन भूत है उसके द्वारा देखता और जानता है। अथवा नानी ज्ञान ही जो ये, अथवा ये भी पाठांतर हो सकता है, ज्ञानी यो तो योगी स जानाति आत्मान, जो ज्ञानी योगी होता है वह इस प्रकार जानता है और देखता है। अथवा ज्ञानी ज्ञान स्वरूपेण आत्मा वो तो जानाति योगी थे। कृष्ण है गौरादि कर्म धर्मान व्यवहारेण जीव संबंधान अपि, कृष्ण गौरादिक जो धर्म है व्यवहारने की अपेक्षा से जीव के साथ संबंध को प्राप्त हुए हैं, फिर भी शुद्ध निश्चय ने शुद्धात्मन भिन्न, शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से शुद्धात्मा से भिन्न कर्म जनितान हेयान कर्म जनित जो हे है उनको वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी स्वशुद्धात्म तत्व तान न योजे दिया, स्वशुद्धात्म तत्व में उनका नियोजन नहीं करता। ऐसे भी गोरे शरीर में बैठा है लेकिन वह शरीर अतीत होकर के अपने आत्म तत्व का अनुभव करता रहता है। इससे शुद्धात्म तत्व के संवेदन के साथ इस गौरापन दिगम्बरपन या और कोई पन पन नहीं लगाता चला जाता है। जब तक बैठे नहीं तब तक बैठने के स्थान का निरीक्षण होता है। सोचो विचार करो, जब तक हम बैठते नहीं तब तक बैठने के स्थान का निरीक्षण होता है, होना भी चाहिए व्यवहार की अपेक्षा। बैठने के उपरांत बैठने के स्थान का निरीक्षण करते नहीं, उठते समय भी नहीं करते, उठते समय आप उसका निरीक्षण नहीं करते किंतु उठते समय आगे जाने का जो रास्ता उसका निरीक्षण करते चले जाते हैं, उसका पीछे मुड़ करके देखते चलते। इसी प्रकार देह की ओर प्रवृत्ति भले ही तब तक हो सकती है जब तक हमारी प्रवृत्ति होती है। जब प्रवृत्ति रुक गई तो शरीर के बारे में क्यों चिंतन करें, शरीर में बैठ करके ही शरीर का चिंतन न कर करके, शरीर में तो बैठा पहले में था किंतु सामग्र में बैठने का अर्थ यह होता है कि शरीर को बिठाने के उपरांत सामग्र में समता में बैठ जा, अर्थात शरीर के प्रति किसी प्रकार का लगाव अब न रखे और बाहरी पदार्थों के साथ भी नहीं, क्योंकि बाहरी पदार्थ के साथ तो शरीर का संबंध है, तो शरीर का साथ ही जब हमारा संबंध नहीं रहा तो बाहरी पदार्थ को तो बात ही नहीं है। भले ही हम बाहर देख रहे हैं लेकिन बाहर देखने का तो केवल बहाना है, समता में हम बैठे हैं, आंख खोल करके भी बैठ सकते हैं सामान्य, ऐसी बात तो ये नहीं, लेकिन आंख का प्रयोग नहीं किया जा रहा, केवल आंख के द्वारा तो है देखा जा रहा है। इधर इधर नहीं देखते हुए इधर देख रहे हो, इधर देखते हुए इधर नहीं देख रहे हो, ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से कॉमन देख रहे हैं। बैठ एक स्थान पर यह देखा कोई रावण से इंद्र हार गया। अब देखो रावण का इतना बल था कि इंद्र वो हार गया। हारने से रावण के पास उसको पाशबद्ध करके लाया गया, और पाशबद्ध करने के उपरांत लाया गया तो उससे उसकी मान की हानि हो गई। इतना है कि जो रावण को जीतने के लिए गया था और रावण के दरबार हार गया और राज दरबार में लाया गया। रावण पूछता है क्या चाहते हो बोलो, हम छोड़ दें तुम्हें? बहुत अच्छी बात है, तुम्हें छोड़ दें, तुम क्या करोगे? आप और कुछ नहीं चाहिए, संसार में क्या है ये सब ज्ञात हो गए, मुझे छोड़ दो। छोड़ दिया उनके माता पिता जो कुछ किसी को मना रहो उनको भी छोड़ दिया, सीधा गया हो जाता है। हाँ नहीं तो सुन लो, अब मान हानि हो गई उसकी, बदले लेने की भाव हो नहीं, शारीरिक बल में हार गया, यांत्रिक बल में हार गया, कषाय के क्षेत्र में हार गया, लेकिन वह पूरी पूरी शक्ति अपने आत्मोन्नति में लगा दिया तो उसे कुछ ही मुहूर्त निकले ने केवल ज्ञात हो गया। और यह वार्ता वहां तक पहुंच गई रावण, उन्हें केवल ज्ञान। तो हार और जीत ये कषाय के परिणाम, वैराग्य के कारण क्या क्या बन सकते हैं, हार भी वैराग्य था, लेकिन देखो हार गए इसलिए वो मुख दिखाने के लायक नहीं रहा इसलिए वो जंगल गया। अरे ऐसी ऐसी बात हो जाती तो उसको केवल ज्ञान हो नहीं सकता, उसकी इतने भाव भीग गए कि क्या संसार में है, विषय और कषाय को लेकर के कितने यहाँ पर ये चल रही है, ये धिक्कार है, अज्ञान का परिणाम है। छोड़ छाड़ जीतने पर वैराग्य नहीं हुआ था, चक्र जब चल गया तब सोचा देखो ये तीन बार तो हार गया, चक्र में भी हार गया फिर भी होठ जमा रहा है, अभी भी जिसका हार है ये नहीं है, ये धिक्कार है संसार के लिए, और चले गए। संयोग दो दुख मणि आप अपापं मनो वै सुनवे न विखात्यु न विशे परि सुनौ सौ इति नवी नानि मुनि असे आत्मा ब्राह्मण नहीं, आत्मा वैश्य नहीं, आत्मा क्षत्रिय नहीं, से शूद्र भी नहीं, वह पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है, वह इस प्रकार ज्ञानी जानता है अपने आप को ज्ञान स्वभाविक, शून्य नहीं है ये नहीं है। आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं, इस अपेक्षा से शून्य, कहने में कोई बाधा नहीं। अपने यहां कल कहेंगे अपने यहां शून्य इकाई नहीं, कल बताएंगे हम ये तो बताएंगे रहस्य। आओ सुनो 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 सुनो, अंक नहीं मत मानो, मत मानो अंतरिक्ष दिखाओ, मत बना, हम स्वीकार जबरदस्ती करना चाहते हो क्या? हम तो आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे उसको। शून्य का अर्थ, शून्य का अर्थ आचार्यों ने अभाव माना, ध्यान रखना, शून्य का अर्थ आचार्यों ने अभाव माना है और इकाई का अर्थ उन्होंने आत्मा माना है, ये ध्यान रखो। कल हम बता देंगे हिसाब किताब के साथ बताएंगे कहां पर शून्य का योग आता है, शून्य का महत्व किस ढंग से है, ये सब बता दिया जाएगा। अभी विषयातीत मत हो, अभी शून्य हो जाओ। क्यों विशिष्ट है, जबरदस्ती कितने होती है देखो इन लोगों की है। अच्छे ज्ञानी स्वरूप आत्मा ज्ञानी सन किम बोलते, किम करोति मनुति जानाति कम अशेषम वस्तु जातम वस्तु समूह मिति तद्यथा ज्ञान एव ब्राह्मणादि वर्ण भेदान पुल्लिंगादि लिंग भेदान व्यवहारिण परमात्म पदार्थात अभिन्नान ने परमात्म पदार्थात व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय ने की अपेक्षा से भिन्ना, कि ब्राह्मण है शूद्र है वैश्य है क्षत्रिय है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है नपुंसकलिंग है, जो कि व्यवहार ने के विषय है, जो कि परमात्म पदार्थात अभिन्न है, आत्म तत्व से मतलब अभिन्न हो गए, शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से भिन्न है, साक्षात हे भूतान ये सब हे की भूति में आ जाते हैं। वीतराग निर्विकल्प समाधि चुतः बहिरात्मा, देखो यहाँ पर अध्यात्म की बुद्धि वीतराग निर्विकल्प समाधि से चुत हुआ नहीं, बहिरात्मा हुआ, निर्विकल्प समाधि चुतः तन बहिरात्मा स्वात्मनि योजयति, अपने आत्मा में इसका नियोजन करता है, इन सब ऊपर के पर्याय। तानेव विपरीत तद विपरीत भावना रत अंतरात्मा, इस बहिरात्मा से विपरीत जो अंतरात्मा है वह इनको स्वशुद्धात्म स्वरूप से नियोजित नहीं करता है, किंतु वह इससे पृथक जानता है मानता है। के प्रति हे बुद्धि नहीं होती तब तक जो है ना भीतर में वह निष्ठावान बनता है, बिल्कुल घृणा आ जाए ये क्या रखा है इसमें, तब तक वह छोड़ेगा ही नहीं, उल्टी होने लग जाए मत दिखाओ नहीं तो उल्टी हो जाएगी, तभी वह छोड़ने लायक हो जाता है, नहीं तो शाम के लिए रख दो जिससे उसका मन अटका हुआ अभी भले ही नहीं खाए अटका हुआ उसमें, ऐसे छोड़ करके किसी को देते तक नहीं, छोड़ देते किसी को देने का अर्थ क्या है, तुम इसको रख लो ऐसे भी अब निकलो क्या दिया राजा युवराज पद को दिया था, वह बारह भावना खाते हुए नहीं दिया था, देखो वो है क्या आइए तो वो ये कह रहे हैं कि बारह भावना के साथ अब दूसरी भावना नहीं होती, ये है वो कर्तव्य है लौकिक दृष्टि से कुछ भी हो, बारह भावना वैराग्य की बात नहीं है, यहाँ पर हमें वैराग्य हो गया ये सुन लो ले लो ऐसा नहीं, ये तुम्हारा कार्य है तुम्हें ये चाबी संभालनी चाहिए, ये चाहिए ठीक है, फिर बाद में बारह भावना बात वैराग्य की बात करो और ये भी ले लो हमें वैराग्य हो गया, हम आपको दे रहे हैं हमें वैराग्य हो गया, ये गलत बात है, वैराग्य दे दो फिर तो बहुत अच्छी बात है, यदि वैराग्य हो गया तो उनको भी वैराग्य दे दो, क्या बात है नहीं बारह भावना बांधते समय वो घर में नहीं रहते बाहर निकल गए, उससे पहले तो राजकीय कार्य था, बच्चों को सब संभालना पड़ता है संभाला जाता है, ये दे दो तुम ये कर दो तुम ये कर दो, उनकी इच्छा की पूर्ति की जाती है, हमारी इच्छा नहीं थी वो उनकी इच्छा पूर्ति की जाती है, फिर इसको वैराग्य आ गया तो फिर कोई बीच में नहीं आ सकता, फिर इंद्र भी यूं यूं करने लग जाए निकल जा निकलने के उस तरफ देखता ही नहीं हूं इंद्र की ओर, पर आज क्या बात हो गई ये बताओ, आपके तो गर्भ में आने से पूर्व से हम यहां नौकरी कर रहे हैं, जब तक आप हैं तब तक तो हमारी नौकरी तो स्वीकार करो, क्या कमी हो गई, नाराज मत हो, हमारी सेवा में क्या कोई कमी है तो हम पूरी कर लेंगे, लेकिन आप हताओ नहीं। क्या बोलते हैं आप लोग, नजर ना मोड़ देना, तो नजर क्या हो तो देखते ही नहीं, नजर विजर कुछ नहीं है। नजर से नजर में लेते क्यों, नजर में गिराने की कहीं गिर रहा है वो, नजर में लेते नहीं तो गिरने की बात ही नहीं होती।